एक जनवरी दिन सोमवार, दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को आदर्श राठौर का नमस्कार। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अमेरिका को दी धमकी, मगर पड़ोसी दक्षिण कोरिया के लिए दिखाई नरमी। क्या है इरादा?
हो सकता है इसकी वजह से साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में एक दरार पड़ जाए।
देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में अपडेट की जा रही राष्ट्रीय नागरिक पंजी के लिए नागरिकों की पहली लिस्ट में नाम न होने से फैला असंतोष।
इतना लोग 1971 मार्च का पहले का डॉक्यूमेंट्स है, इतना लोगों का पास है और जितने लोगों ने जमा दिया है, सारे लोगों का नाम एनआरसी में आएगा, ये हमारा पूरा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का ऊपर।
पुलवामा में चरमपंथियों के खिलाफ ऑपरेशन में एक और की मौत। सुनाएंगे आपकी राय भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मोहम्मद शाहिद से। उत्तर कोरिया के प्रमुख नेता किम जोंग उन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि उनकी टेबल पर परमाणु बटन रहता है, लेकिन उन्होंने दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत की संभावनाओं को भी नहीं नकारा है। नए साल के भाषण में किम ने कहा कि दक्षिण कोरिया में अगले महीने होने वाले विंटर ओलंपिक्स में भाग लेने को लेकर उत्तर कोरिया बात करेगा। ईरान के राष्ट्रीय टीवी चैनल ने बताया है कि देश भर में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान रात में 10 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट में एक घटना का जिक्र किया गया है जिसमें हथियारबंद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के अड्डे पर गोलियां चलाई और उसे कब्जे में लेने की कोशिश की। हालांकि राष्ट्रपति हसन रूहानी की शांति की अपील के बावजूद ये हिंसा हुई है। बीजिंग प्रशासन के खिलाफ हांगकांग में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया है। प्रस्तावित नए रेल टर्मिनल को लेकर प्रदर्शनकारी अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे। उनके अनुसार इसके कारण ये क्षेत्र चीन की मुख्य भूमि में प्रदर्शित होगा। हांगकांग अधिकारियों का कहना है कि इसके कारण बाकी चीन में यात्रा करना आसान होगा। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये हांगकांग की कानूनी स्थिति की अवहेलना है। लोकतंत्र समर्थक जोशुआ वांग ने कहा कि विरोध का मकसद चीन की पकड़ को कमजोर करना है। खास तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के बाद शी जिनपिंग की विचारधारा ने पूरी तरह हांगकांग के बुनियादी मूल्यों को नष्ट कर दिया है। मुझे आशा है कि बीजिंग से ये बुनियादी मूल्य वापस जीतने के लिए हांगकांग का हर नागरिक बदला ले सकता है। ये थे लोकतंत्र समर्थक जोशुआ वांग के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के वर्षों में अरबों डॉलर की सहायता राशि लेकर भी झूठ बोलने और धोखा देने का आरोप पाकिस्तान पर लगाया है। अपने ट्वीट में ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी सेना जिन चरमपंथियों को ढूंढ रही थी, पाकिस्तान ने उन्हें पनाह दी। अमरीकी सरकार अगस्त में इस्लामाबाद को दी जाने वाली $250 मिलियन की रकम रोकने पर विचार कर रही थी। उस समय पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में मदद करने का वादा किया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कैलिफोर्निया अमरीका का ऐसा सबसे बड़ा राज्य बन गया है जहाँ गांजे का उपयोग वैध है। 21 साल तक के वयस्क 28 ग्राम तक ही अपने पास रख सकते हैं और घर में 6 पौधे उगा सकते हैं। 14 महीने पहले कैलिफोर्निया ने गांजा वैध करने के पक्ष में अपना वोट दिया था। वैध करने के समर्थक एक वकील स्टीव डीएंजेलो कहते हैं,
California is significant because of its economic might in the world.
कैलिफोर्निया विश्व में अपनी आर्थिक शक्ति के कारण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन ब्रांड्स का जन्म स्थान है जो विश्व का ध्यान आकर्षित करते हैं। गांजा उगाने को लेकर यहाँ की सूक्ष्म जलवायु आदर्श है। साथ ही हमारे पास हॉलीवुड और सिलिकॉन वैली हैं। ये ऐसे दो मंच हैं जिससे कैलिफोर्निया दुनिया तक पहुँचता है। ये थे वकील स्टीव डीएंजेलो के शब्द। स्पेन के वित्त मंत्री लुइस डे गिंडोस ने कैटालोनिया के स्वतंत्रता संकट को अरबों डॉलर का बताया है। उन्होंने स्पेनिश रेडियो से कहा है कि कैटालोनिया अर्थव्यवस्था में सुस्ती अक्टूबर के पहले हफ्ते में कराए गए अवैध जनमत संग्रह के कारण आई है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में विकास स्पेन की अर्थव्यवस्था का मुख्य चालक था, जो अब 0.09% से घटकर करीब 0.4% पर पहुंच चुका है। संकट के बाद 3,000 से अधिक कंपनियां अपने कानूनी मुख्यालय को कैटालोनिया से बाहर ले जा चुकी हैं। चीन ने आज से प्लास्टिक, कागज और कपड़ों समेत आयात किए जाने वाले विदेशी कचरे को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने नए साल के संबोधन में अमेरिका और उसके सहयोगियों पर तंज कसा और कहा कि न्यूक्लियर बटन उनके डेस्क पर ही है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने।
미국은 결코 나와 우리 국가를 상대로 전쟁을 걸어오지 못합니다. 미국 본토 전역이
अमेरिका कभी भी मेरे और मेरे देश के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ पाएगा। पूरा अमेरिका हमारे न्यूक्लियर हथियारों की जद में है और इनका बटन हमेशा मेरे डेस्क पर रहता है। यह हकीकत है, कोई धमकी नहीं। इस साल हम न्यूक्लियर हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल का बड़े स्तर पर उत्पादन करने पर फोकस करेंगे। ये थे किम जोंग उनके शब्द। खास बात यह है कि इस बार उत्तर कोरिया के नेता ने दक्षिण कोरिया की तरफ थोड़ी नरमी दिखाई। उन्होंने विंटर ओलंपिक्स के आयोजन के लिए दक्षिण कोरिया को शुभकामनाएं भी दी। दक्षिण कोरिया में विंटर गेम्स का आयोजन एक अच्छा अवसर है। हमें उम्मीद है कि ये गेम्स कामयाब होंगे। हम इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं और एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजेंगे। दोनों कोरिया के अधिकारियों को मिलकर संभावनाओं पर चर्चा करनी चाहिए। ये थे किम जोंग उन के शब्द। और बता दें कि दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का स्वागत किया है। लेकिन एक बात जो एक निकल कर आ रही है वो ये कि आखिर अमेरिका को धमकी और साउथ कोरिया के प्रति नरमी के पीछे किम जोंग उनकी रणनीति क्या है। कुछ देर पहले मैंने बात की अमेरिका की डेलावे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुख्तदर खान से और उनसे यही सवाल किया।
ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, कई कई महीनों के बाद पहली बार उन्होंने डायरेक्टली साउथ कोरिया को एड्रेस किया और टॉक्स ऑफर किए, बहुत दिलचस्प ऑफर है। एनालिस्ट का बात ख्याल है कि हो सकता इसकी वजह से साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में एक दरार पड़ जाए, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि अब यूएन के जो सख्त सैंक्शंस के बाद अगर वो सैंक्शंस को बहुत सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए तो नॉर्थ कोरिया पे बहुत दबाव पड़ सकता है। लेकिन अगर ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया के साथ डायलॉग करने का, अगर इस पे वो आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसमें साउथ कोरिया अकेला नहीं होगा, रशिया और चाइना भी साथ है। वो चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के साथ कोई मीनिंगफुल डायलॉग शुरू हो जाए। और किम जोंग उन ने ना सिर्फ ये भी ऑफर किया, लेकिन उन्होंने शायद पूरी तरह से तैयार हो गए कि वो साउथ कोरिया में जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं अगले महीने, उसमें भी हिस्सा लेने का वादा किया है। क्योंकि साउथ कोरिया ने रिक्वेस्ट किया था नॉर्थ कोरिया को कि वो एक टीम भेजे विंटर ओलंपिक्स के लिए। अगर वो हो जाता है तो काफी गुडविल पैदा हो जाएगी साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया की तरफ से। पिछले जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे तो उसमें ये जो करंट प्रेसिडेंट है मून जी, वो काफी मतलब विद इन द साउथ कोरियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में वो नॉर्थ कोरिया सिंपथाइजर माने जाते हैं और यूनिफायर की तरफ, मतलब रिकंसिलिएशन के लिए की पार्टी से कनेक्शन है उनका। तो मुझे लगता कि दिस कुड बी एन इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट।
क्या ये माना जाए कि इस नरमी के पीछे या जो एक तरह से थोड़ा अलग रुख अपनाया है उत्तर कोरिया ने, इसके पीछे जो इंटरनेशनल दबाव है, प्रतिबंध है, उनकी भी भूमिका रही होगी?
देखिए, नॉर्थ कोरिया के लिए जो इमीडिएट जो सैंक्शन का असर हुआ है वो बड़ा सख्त है। तेल की कीमत तकरीबन एनर्जी की, ऑयल की, गैस की, वो डबल हो गई है नॉर्थ कोरिया में पिछले चंद महीनों में। अगर ये सिचुएशन आप इमेजिन करें इंडिया में या यहाँ अमरीका में, अगर गैस की कीमत डबल हो जाएगी तो रायट्स हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि हार्ड करेंसी जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है। पिछले चंद सालों में इतने सख्ती से जो सैंक्शंस हो रहे हैं उसके बावजूद नॉर्थ कोरिया ने बहुत ही इंटरेस्टिंगली काफी फॉरेन करेंसी हासिल कर ली थी उन्होंने, और एक किस्म से उन्होंने एक अल्टरनेट इंटरनेशनल इकोनॉमी अपने लिए पैदा कर ली थी। बेसिकली नॉर्थ कोरिया का लेबर वो भेज रहे हैं। ये जो चाइना का जो प्रोजेक्ट है वन रोड वन, ये जो सिल्क रोड जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें कई जगहों पर कई मुल्कों में चाइनीज फर्म्स नॉर्थ कोरिया के लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अभी चाइनीज लेबर से भी ज्यादा चीपर है। तो ये सैंक्शंस की वजह से शायद वो भी रुक जाए। नॉर्थ कोरिया की ये कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से जो पूरी तरह से अमेरिका उसको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है वो उसमें से निकल के आ जाए, और सबसे बेस्ट ऑप्शन उनका साउथ कोरिया है जो सबसे ज्यादा डरता है नॉर्थ कोरियन मिसाइल से, नॉर्थ कोरियन वेपन से। जंग दोनों के लिए फायदेमंद नहीं है। तो मुझे लगता कि हो सकता कि साउथ कोरिया ये चांस लेगा नॉर्थ कोरिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका किसी भी डायलॉग के लिए तैयार नहीं है विदाउट डी न्यूक्लियराइजेशन।
प्रोफेसर मुक्तदर खान बता रहे थे कि आखिर क्यों किम जोंग उन पड़ोसी पर नरम और अमेरिका पर गर्म है। रुख करते हैं देश के भारत के उत्तर पूर्व में असम में अपडेट की जा रही राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी मसौदे का, जिसकी पहली सूची जारी कर दी गई है। इसको अपडेट करने का मकसद यह है कि असम में बांग्लादेश से आकर अवैध रूप से बसे लोगों को वापस भेजा जाए, लेकिन पहली सूची जारी होने के बाद भ्रम और असंतोष की स्थिति पैदा हो गई है। इसी पर सुनिए असम से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
असम को अवैध बांग्लादेशी नागरिकों से मुक्त कराने के लिए असम सरकार ने 31 दिसंबर की आधी रात राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी का पहला मसौदा जारी कर दिया है। अपडेट इस मसौदे की पहली सूची में 1,90,00,000 लोगों के नाम प्रकाशित किए गए हैं, जबकि प्रदेश के 3,29,00,000 लोगों ने इस नई राष्ट्रीय नागरिक पंजी में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया था। राज्य सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन रखा है ताकि लोग आवेदन नंबर के जरिए अपना नाम प्रकाशित सूची में देख सके। इसके अलावा एसएमएस सेवा भी शुरू की गई है। साथ ही समूचे राज्य में मौजूद एनआरसी सेवा केंद्रों में भी लोग जाकर अपने नाम की जांच कर सकते हैं। साल के पहले दिन लोग अपने सभी जरूरी काम छोड़कर प्रकाशित हुई एनआरसी सूची में अपना नाम तलाशने में जुटे हुए थे। कई लोगों की शिकायत है कि उनके परिवार के आधे लोगों का नाम ही एनआरसी मसौदे की सूची में आया है। ऐसी ही एक शिकायत करते हुए डिब्रूगढ़ की आजरा बेगम ने बीबीसी से कहा,
अभी तक तो मेरा नाम दिखा नहीं। मेरे एनआरसी सेंटर में मेरी दामाद और मेरी बेटी गया हुआ था, वहाँ दामाद जी का और मेरा नाती का नाम दिखा, लेकिन मेरी और मेरी बेटी का नाम अभी तक नहीं मिला, और हम लोग नेट में भी चेक किया, वहाँ भी नहीं दिखा।
हालांकि एनआरसी मसौदे की पहली सूची जारी करने के बाद राज्य सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के नाम पहली सूची में नहीं है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बाकी नामों की वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। एनआरसी सेवा केंद्रों पर जमा भीड़ की मदद कर रहे अखिल असम अल्पसंख्यक छात्र संघ के अध्यक्ष अजीजुर रहमान कहते हैं,
बहुत लोगों का नाम पार्ट पब्लिकेशन होने से बहुत लोगों का नाम नहीं आया, फिर हमारा विश्वास है माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट मॉनिटरिंग से ये एनआरसी का काम चल रहा है, इसीलिए हमारा पूरा उम्मीद है जितना लोग 1971 मार्च का पहले का डॉक्यूमेंट है, जितना लोगों का पास है और जितने लोगों ने जमा दिया है, सारे लोगों का नाम एनआरसी में आएगा, ये हमारा पूरा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का ऊपर।
एनआरसी के मद्देनजर असम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। इस संदर्भ में राज्य के पुलिस महानिदेशक मुकेश सहाय ने कहा,
नहीं नहीं, हमने जो इसलिए एसएमएस वेबसाइट वगैरह के जो ऑप्शन दिए उसकी वजह से लोगों ने ज्यादा संख्या में उनको जरूरत नहीं पड़ी सेवा केंद्र पर आने की, एनआरसी केंद्र पर आने की। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था भी है, कहीं किसी सेना को न उतारा गया न ऐसी अभी फिलहाल कोई ऐसी कोई संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम में एनआरसी अपडेट का काम चल रहा है। एनआरसी अपडेट के लिए मई 2015 में आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके तहत असम के 68,27,000 परिवारों से कुल 6,50,00,000 दस्तावेज प्राप्त किए गए हैं। असम सरकार का कहना है कि संपूर्ण एनआरसी का काम 2018 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
भारत प्रशासित कश्मीर में रविवार से जारी जिला पुलवामा में चरमपंथियों के खिलाफ ऑपरेशन में आज एक और चरमपंथी की मौत हुई। अभी तक इस ऑपरेशन में कुल 8 लोग मारे जा चुके हैं। चरमपंथियों के फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान भी शामिल हैं। सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
दक्षिणी कश्मीर के जिला पुलवामा के लेथपोरा में रविवार तड़के से जारी चरमपंथियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान आज तीसरे चरमपंथी का शव कैंप के एक इमारत से तलाशी अभियान के दौरान बरामद किया गया। रविवार को भारी हथियारों से लैस 3 चरमपंथियों ने लेथपोरा में सीआरपीएफ के ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया था और कैंप के अंदर दाखिल होने में फिदायीन चरमपंथी कामयाब हो गए थे। चरमपंथियों की फायरिंग में 5 सीआरपीएफ के जवान भी मारे गए थे, जबकि अन्य दो जवान घायल हो गए थे। सीआरपीएफ की जवाबी कार्रवाई में इस ऑपरेशन में कुल 3 चरमपंथी मारे जा चुके हैं। रविवार को ऑपरेशन के दौरान जैश मोहम्मद के 2 स्थानीय चरमपंथी मारे गए थे, जिनमें एक की उम्र 17 वर्ष की बताई गई है, जिनकी शिनाख्त फरदीन खांडे के रूप में हुई है। श्रीनगर में सीआरपीएफ के विशेष डीजी जेंड के जून एसएन श्रीवास्तव ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक कैंप के अंदर तलाशी अभियान जारी है।
सम अमाउंट ऑफ सर्च ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। वी वांट टू डिस्काउंट एनी चांस ऑफ एनीबॉडी हाइडिंग एनीवेयर।
डीजी बता रहे थे कि अभी तक हम पूरी इमारत का तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं और ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। वो कह रहे थे कि मारे गए 2 चरमपंथी स्थानिया हैं, जबकि तीसरा चरमपंथी विदेशी है। सीआरपीएफ की जवाबी कार्रवाई में मारे गए फरदीन खान का 8 मिनट का एक वीडियो हमले के एक दिन बाद वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उन्होंने कैंप पर हमला करने से पहले शूट किया है। इस वीडियो में फरदीन अपने दाएं बाएं और सामने हथियारों का एक बड़ा जखीरा रखे हुए नजर आ रहे हैं। फरदीन ने अपने 8 मिनट के इस वीडियो संदेश में कश्मीर के नौजवानों को जैश में आमंत्रण होने के लिए कहा है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इस तरह के हमले भारत की सुरक्षा एजेंसियों के ठिकानों पर जारी रखे जाएंगे। वीडियो में फरदीन ये भी बताते हैं कि हर मुसलमान पर जिहाद करना फर्ज है। हालांकि पुलिस ने वीडियो पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है। पुलिस के एक टॉप अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि अभी वो वीडियो की जांच पड़ताल कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीते वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब स्थानीय चरमपंथियों ने फिदायीन हमले में भाग लिया हो। इस दौरान मारे गए चरमपंथी फरदीन के जनाजे में भारी संख्या में लोग शामिल हो गए। उधर पुलवामा के एक स्थानीय फोटो पत्रकार ने बताया कि पुलवामा के द्रगबल इलाके में सुरक्षा बलों और युवाओं के बीच झड़पें भी हुई, जिन झड़पों में एक युवक को गोली लग गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि चरमपंथियों की मौत के खिलाफ पुलवामा में आज लोगों ने हड़ताल की, जिसकी वजह से इलाके के सभी कारोबारी इदारे बंद रहे। माजिद जहांगीर, बीबीसी, श्रीनगर।
तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा से द्रविड़ राजनीतिक विचारधारा से संबंध रखने वाली फिल्मी हस्तियों का दबदबा रहा है। आज तमिलनाडु के सामने 2 ऐसे अभिनेताओं का विकल्प है जो द्रविड़ पार्टियों से नहीं आए हैं, रजनीकांत और कमल हासन। ऐसे में वो कितने कामयाब हो पाएंगे और राजनीति के पर्दे पर सफलता के लिए उन्हें क्या करना होगा, इसी पर सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
राजनीति में आना सामान्य सी बात है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी चलाना और चुनाव लड़ना मामूली सी बात नहीं होती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रजनीकांत और कमल हासन राजनीति में भी उतना ही नाम कमा सकेंगे जितना उन्होंने फिल्म जगत में कमाया है। हमने यह सवाल वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक एस मुरारी से पूछा। उन्होंने कहा,
As far as politics is concerned, they are both greenhorns.
रजनीकांत और कमल हासन दोनों राजनीति में अन्नाड़ी हैं। उन्होंने MGR और जयललिता की द्रविड़ियन पार्टियों में काम नहीं किया है। राजनीति में रहने के लिए लड़ने का जोश चाहिए, बने रहने की शक्ति चाहिए। राजनीति पार्ट टाइम काम नहीं है, इसके लिए लोगों से मिलने और उनकी बातों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये थे एस मुरारी के शब्द। ये बात मायने रखती है कि किसी भी चुनाव में सिर्फ फिल्म फैंस उम्मीदवार को जीत नहीं दिलाते हैं, तो इस लिहाज से रजनीकांत और कमल हासन में से कौन आम जनता के साथ संयोजित कर सकते हैं। वरिष्ठ विश्लेषक मालन कहते हैं,
रजनी विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। वन प्लस पॉइंट फॉर रजनी इज
रजनीकांत एक सीधे साधे तरीके से लोगों से बात करते हैं। उनकी सफेद दाढ़ी और सर पर विग के बिना लोगों के सामने आ जाते हैं और लोग मानते हैं कि वो सादगी के प्रतीक हैं। दूसरी तरफ कमल हासन जिस भाषा में बात करते हैं वो मध्यम वर्ग के लोगों को समझ आती है। ये थे मालन के शब्द। मतलब ये कि किसी ड्राइंग रूम या रणशाला में राजनीति करने से वोट नहीं आ जाते हैं। राजनीति आराम का काम भी नहीं है। इसमें रजनीकांत और कमल हासन कैसे काम करेंगे, इसी पर इनकी राजनीतिक सफलता निर्भर करेगी। इमरान कुरैशी, BBC, बेंगलुरु।
और अब समय है आपकी राय का।
आपकी राय। पुराने साल की ठिठुरी हुई परछाइयां सिमटी, नए दिन का नया सूरज उफक पर उठता आता है। अली सरदार जाफरी के शेर के साथ आपकी राय में मैं राजेश जोशी अपने सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। साल का पहला दिन हम सबको एक मौका देता है जब आप पिछले साल के हासिल
और इस बरस के संकल्पों का आकलन करते हैं ताकि अपने जीवन को दिशा दे सकें। ऐसे दिन आप सबसे मुखातिब होते हुए मुझे बहुत खुशी है और ये कोई ऐसा वाक्य नहीं है जिसे साल की शुरुआत में रस्मी तौर पर कहा जाए, क्योंकि आपके और हमारे बीच कोई रस्म, कोई औपचारिकता की कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि बीबीसी के श्रोता जिस अपनेपन और हक के साथ हमसे संवाद करते हैं वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आपकी सलाह, तारीफ और आलोचना हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। मैं वंदना से पूछता हूँ, जो बहुत देर से मुस्कुरा रही हैं और इंतजार कर रही हैं, कि नए साल का स्वागत आपने कैसे किया?
पहले तो ये कि मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज जो चिट्ठियों का जो सिलसिला होता है, पहला सोमवार है तो वो मौका मुझे मिल गया।
आपको मिला, बिल्कुल लगा आपको।
तो छुट्टी नहीं लेने का ये एक फायदा है पहली तारीख।
पहली तारीख को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे तमाम श्रोताओं से आप और हम दोनों मिल करके संवाद कर रहे हैं। तो पहली चिट्ठी क्या है?
जी, ये पहला है, ईमेल है, संदीप रोशन दुधपुरा मंगलगढ़ समस्तीपुर बिहार से लिखते हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों ने कभी भी मेरा जो ईमेल है वो शामिल नहीं किया, आप तो नए श्रोताओं को तवज्जो ही नहीं देते।
चलिए, तो पहले दिन, साल के पहले दिन इनकी शिकायत तो दूर हो गई।
जी, और इन्होंने लिखा है कि वर्षांत कार्यक्रमों में मोदी जी पर विशेष कार्यक्रम राजेश जोशी द्वारा प्रस्तुत किया गया जो कि मन को छू गया और इन्हें काफी पसंद आया। ये जो कार्यक्रम है, इन बहुत सारे ईमेल जो आज हैं वो इसी प्रस्तुति को लेकर आए हैं और जहाँ पे तारीफ हुई है, कई लोगों को पसंद आया है, बहुत से लोगों को थोड़ा सा
बुरा भी लगा है।
तो सुनील दत्त बड़गुजर को ये कार्यक्रम पसंद नहीं आया। लिखते हैं कि मैं 28 साल का अध्यापक हूँ और राजस्थान जोधपुर लोहावट में रहता हूँ। साल के आखिरी दिन 21 तारीख को आपने देश के महानतम प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाई है, उनको मजाक बनाया, एक तरह से उनका मजाक बनाया है।
इस कार्यक्रम का मकसद ही दरअसल ये था कि कुछ ऐसे लोगों पे चुटकी ली जाए जो फैसले करते हैं बड़े। यानी आप देखिए, अखबार में कार्टून की जो जगह होती है वो क्यों होती है? ताकतवर लोग जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, फैसले करते हैं, उन पर आप हल्की फुल्की टिप्पणी करें, चुटकी लें, मजा लें, ये डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र तो इसी का नाम है। तो इसको दिल पे मत ले यार, एक फिल्म आई थी ना उसी तरह, आप प्लीज दिल पे ना लें, ये मजाक का पुट था और उसी हिसाब से आप इसको समझिए।
और बहुत सारे राजनेता तो इसको पसंद करते हैं।
मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि अगर नरेंद्र मोदी ने खुद प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम सुना होगा तो उनको पसंद ही आया होगा।
मनोज कुमार सोगरवाल ये भी लिखते हैं कि पहली बार जोशी जी का कोई कार्यक्रम इन्हें थोड़ा सा बुरा लगा।
नहीं, आपकी, जैसे मैंने शुरुआत में कह दी, आपकी आलोचना और आपकी तारीफ दोनों सरमाथे। अगर हम बिल्कुल अपने जीवन से ह्यूमर को या तंज को या व्यंग को निकाल देंगे तो कितना नीरस हो जाएगा जीवन।
लेकिन जो वर्षांत कार्यक्रम है उनको लेकर काफी तारीफ की चिट्ठियां आई हैं। प्रमोद कुमार यादव ग्राम गोटहा जिला मऊ से लिखते हैं कि मलय नीरव द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जो खेलों पर आधारित था, पीवी सिंधु और श्रीकांत जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, वो इन्हें काफी अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि इन दोनों से ज्यादा मुझे मलय नीरव की आवाज और प्रस्तुति अच्छी लगी जो काफी समय के बाद सुनी।
हाँ, काफी समय के बाद, क्योंकि मलय नीरव से हम जब खास गुजारिश करते हैं कि आप आइए और हमारे श्रोता आपका इंतजार करते हैं तो मलय नीरव कभी मना नहीं करते हैं, हालांकि बहुत व्यस्त आदमी है वो, लेकिन उनका कार्यक्रम मुझे भी बहुत पसंद आया।
जी, और रफीक इब्राहिम साहब हैं, मीना कुमारी की जो विवेचना है वो इन्हें पसंद आई।
ये रेहान फजल ने जो विवेचना की थी मीना कुमारी पे।
जी,
सब चिट्ठियों को पढ़ पाना तो शायद संभव नहीं होगा वंदना जी आपके लिए,
जी।
लेकिन कम से कम नाम ही
पढ़ देती हूँ। ये है मुकेश कुमार टेलर्स गांव भीलखेड़ी सेहोर, नवीन राय, अजीम भालकी, आशिक खान, नवीन चंद्र राय।
अब इन्होंने कहाँ कहाँ से लिखा है ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सबके ईमेल हैं और ज्यादातर हमारे श्रोता पता उसमें नहीं देते हैं।
नवीन चंद्र राय गिरिडीह से हैं, उन्होंने मीना कुमारी को लेकर तो अपनी तारीफ उन्होंने जाहिर की है। इसके अलावा इन्होंने दिन भर कार्यक्रम में कहा है कि मोहनलाल द्वारा प्रस्तुत दुनिया परमाणु शक्ति संपन्न देश जो है उनको लेकर जो पूरा विवेचना थी,
विवेचना नहीं बल्कि वर्षांत कार्यक्रम उनको कहिए, वो किया था उन्होंने, वो काफी उसमें मेहनत की थी और वो मुझे भी पसंद आया।
इन्होंने कहा कार्यक्रम आंखें खोलने वाला, तो जाहिर है काफी इनको अच्छा लगा। तो जोशी जी, दोबारा उसी पे लौटते हैं, आपने जो प्रस्तुति दी थी। मस्कट से एक ईमेल आया है, के एस एन मूर्ति, ये लिखते हैं कि वर्षांत कार्यक्रम में भेड़ बकरियों की आवाजों का इस्तेमाल मुझे पसंद नहीं आया, ये मीडिया के सस्ते तरीके हैं और बीबीसी को ऐसा नहीं करना चाहिए।
मूर्ति साहब, ये समाचार नहीं था, ये वर्षांत कार्यक्रमों का एक हिस्सा था जिसमें हंसी ठिठोली के जरिए श्रोताओं को गुदगुदाना, कहीं पर थोड़ा सा उनको प्रोवोक करना और आनंद लेना, ये एक उसका मकसद था।
एक बार फिर से चलने से पहले मैं आप सब लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। 1 जनवरी 2018 में हम जिस तरह से मिले हैं उस तरह से हमारी बैठकें बातचीत ये जारी रहे, यही अभिलाषा है। चलते चलते पता बता देते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां नए साल में मानो भारत की घरेलू टीम विदर्भा को नई सौगात मिली हो। विदर्भा ने इंदौर में रणजी ट्रॉफी के फाइनल में 7 बार के चैंपियन दिल्ली को 9 विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। विदर्भा के सामने केवल 29 रन का लक्ष्य था और उसने 1 विकेट पर 32 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। विदर्भा ने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और फिर दिल्ली की टीम को 295 रन पर आउट कर दिया। इस मुकाबले में विदर्भा के तेज गेंदबाज रजनीश गुरबानी के अच्छे प्रदर्शन के कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और उन्होंने 59 रन देते हुए 6 विकेट लिए। विदर्भा की टीम पहली बार रणजी के फाइनल तक पहुंची थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज संकेत दिया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद और गोलीबारी बंद नहीं कर देता, तब तक उसके साथ किसी भी द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला की संभावना नहीं है। सुषमा ने ये बात विदेश मंत्रालय संबंधित संसद की सलाहकार समिति के एक बैठक के दौरान की। बैठक में विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर और विदेश सचिव जयशंकर भी मौजूद थे। इस बैठक का एजेंडा पड़ोसियों के साथ संबंध था। वही कुश्ती में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। रेसलिंग ट्रायल के दौरान 29 दिसंबर को दिल्ली के KD जाधव स्टेडियम में 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार के समर्थकों द्वारा रेसलर प्रवीण राणा के भाई को पीटे जाने के बाद ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। राणा द्वारा मामले में सुशील और उनके समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के बाद सुशील कुमार ने कहा कि वह भी मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। सुशील ने कहा कि राणा मुकाबले के दौरान उनके साथ बदतमीजी के साथ लड़ रहे थे। हालांकि राणा ने इसे खारिज किया है। दरअसल 29 दिसंबर को KD जाधव स्टेडियम में प्रवीण राणा और सुशील कुमार के समर्थकों में मारपीट और जमकर हंगामा हुआ था। प्रवीण राणा और उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि सुशील कुमार के समर्थकों ने धमकी दी थी कि वे उनके खिलाफ प्रो रेसलिंग लीग में हिस्सा लेकर दिखाएं, जिसके बाद ये हंगामा हुआ। प्रो रेसलिंग लीग की शुरुआत 9 जनवरी से होगी।
श्रोताओं को बता दें कि ईरान में लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकारी TV के मुताबिक 10 लोगों की अब तक वहां पर मौत हो चुकी है। इस बारे में ज्यादा खबरों के लिए और ये जानने के लिए कि ईरान के प्रदर्शनों में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, आप bbchindi.com के वेबसाइट पर उसके पेज पर आ सकते हैं। तो इससे पहले कि विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया के प्रमुख नेता किम जोंग उन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि उनकी टेबल पर परमाणु बटन रहता है, लेकिन उन्होंने दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत की संभावनाओं को भी नहीं नकारा है। ईरान के राष्ट्रीय TV चैनल ने बताया है कि देश भर में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान रात में 10 लोगों की मौत हुई है। बीजिंग प्रशासन के खिलाफ हांगकांग में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया है। प्रस्तावित नए रेल टर्मिनल को लेकर प्रदर्शनकारी अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे। उनके अनुसार इसके कारण यह क्षेत्र चीन की मुख्य भूमि में प्रदर्शित होगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के वर्षों में अरबों डॉलर की सहायता राशि लेकर भी झूठ बोलने और धोखा देने का आरोप पाकिस्तान पर लगाया है। अपने ट्वीट में ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी सेना जिन चरमपंथियों को ढूंढ रही थी, पाकिस्तान ने उन्हें पनाह दी। कैलिफोर्निया अमरीका का ऐसा सबसे बड़ा राज्य बन गया है जहाँ गांजे का उपयोग वैध है। स्पेन के वित्त मंत्री लुइस डे गिंडोस ने कैटालोनिया के स्वतंत्रता संकट को अरबों डॉलर का बताया है। उन्होंने स्पेनिश रेडियो से कहा है कि कैटालोनिया अर्थव्यवस्था में सुस्ती अक्टूबर के पहले हफ्ते में कराए गए अवैध जनमत संग्रह के कारण आई है। चीन ने आज से प्लास्टिक, कागज और कपड़ों समेत आयात किए जाने वाले विदेशी कचरे को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। प्रदूषण समाप्त करने और नागरिकों की सेहत सुधारने के लिए बीजिंग अब 24 प्रकार के विदेशी कचरे को रिसाइकल नहीं करेगा। राजस्व बढ़ाने और अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल की आय पर कम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार बिक्री कर पेश किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला तिलक राज भाटिया ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया ब्रजेश मिश्रा ने। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को दें इजाजत। नमस्कार।